कहते हैं जिन्होंने ये सीख लिया कि वो दुआ करें, छोटी से छोटी मुश्किल पर, छोटी छोटी परेशानी जब आए तो अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा लें, तो उन्होंने एक ऐसा राज सीख लिया है जो आपको ये बताता है कि कैसे आप लोग एक खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी और एक गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो क्या हम लोगों को इस राज के बारे में पता है या नहीं पता, इसके बारे में आज सोचेंगे। प्रोग्राम सुबह जिंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह जिंदगी में बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहता हूँ। तेहरान स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं मैं और रुबाब जी।
अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, और मैं अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन को सलाम अर्ज करती हूँ। नाज़रीन, इस उम्मीद से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह का आगाज़, एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होगी और हमारे प्रोग्राम के साथ कर चुके होंगे।
जी बिल्कुल, आपने सही किया। और प्रोग्राम शुरू होने से पहले यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे एक बड़े अहम मौजू पर, और वो अहम मौजू है कि कब है सबसे लंबी रात,
आज का दिन है जी।
आज की जो रात आने वाली रात है वो, यानी हर जगह सबसे लंबी रात होगी
जी। मेरे ख्याल से सर्दियों की सबसे लंबी रात है 15 जून, जो होता है सबसे गर्म दिन और सबसे लंबा दिन होता है।
अच्छा
जी,
उसी तरह जो है
पाकिस्तान वगैरह में काफी हद तक उसके लिए सेलिब्रेशन नहीं है, एक तरह से अहम दिन है। और उसी तरह नाज़रीन यहाँ ईरान में जो है हमारे पास आज की रात है, यानी सर्दियों की सबसे लंबी रात है जो आज की रात है जी।
और उस रात में जो है बहरहाल यहाँ पर लोग जो है मिल बैठ के इबादत करते हैं। कौन लोग मिल बैठ के इबादत करते हैं?
तमाम जो घर वाले होते हैं, जो घर के जो जितने भी हमारे अफराद होते हैं वो इकट्ठे होते हैं एक जगह, या आपके जो दादा दादी हैं उनके घर या माँ बाप के घर जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कुछ बातचीत, कुछ इबादत होती है, कुछ खाने पीने की बातें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रात को तरबूज के साथ मनाया जाता है।
अच्छा, तरबूज लाए जाते हैं
जी, तरबूज बस होना जरूरी है बीच में दस्तरखान
के ऊपर। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अच्छा जो है मुख्तलिफ फलों का इस्तेमाल किया जाता है, और तरबूज का, अनार का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है,
ड्राई फ्रूट्स भी बहुत होते हैं क्योंकि सर्दियां हैं तो वो खाते हैं ताकि वो एनर्जी भरी रहे रात भर जागने के लिए,
और एनर्जी भी जो है वो बढ़ती जाती है, और उसके साथ साथ इबादत भी मिल बैठ के की जाती है अपने बुजुर्गों के, अपने बड़ों के घरों में जाकर जो है। बहरहाल यहाँ पर बच्चे जो हैं, बच्चों से मुराद मेरी ये नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे, जो जवान जो शादीशुदा लोग भी हैं वो भी अपने माँ बाप के घर, दादा दादी के घर इस तरह जाते हैं और वहाँ पर मिल बैठ के इबादत करते हैं, और कोशिश करते हैं कि सुबह फजर के टाइम तक जो है जागे रहें। अलबत्त खैर
फजर की नमाज भी साथ ही होती है तकरीबन जी, बड़ा
बहरहाल ये जो है बहरहाल ये प्रोग्राम जो है आज रात को जो है ईरान में होगा, तो अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो आप बहरहाल इससे मुस्तफीद हों। बहरहाल और जो है हमारे साथ आज मेहमान कौन होंगे?
खुर्रम, हफ्ते का दिन है और हमारे नाज़रीन भी जानते हैं और आपको भी पता होगा कि तर्ज ज़िंदगी का दिन होता है, लाइफस्टाइल, हमें किस तरह अपनी तर्ज ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम करने चाहिए जो हमारे मुस्तकबिल को या हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। डॉक्टर जाफ़र रज़ी ख़ान साहब हमारे साथ होंगे, और आज का जो हमारा वो मौजू है इस कुछ इस तरह से है कि हमारे वजीफ़े जो आपस में है, एक मियाँ और एक बीबी का जो घर में जो होता है फ़राइज़ जो होते हैं, ताकि अपने घर का माहौल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकें, हम इंशाल्लाह इस बारे में बात करेंगे।
बड़ा अहम मौजू है, और मैं जो है ख्वाहिश करूँगा अपने नाज़रीन से कि वो इसको गौर से बैठ के सुने, क्योंकि अहम मौजू है। घर का माहौल ठीक नहीं होगा तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, ऑफिस में आपका काम ठीक नहीं होगा, स्कूल में बच्चों का काम ठीक नहीं होगा, ये सारे मसाइल जो है बहरहाल चलते रहेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी, वो ये है कि डॉक्टर साहब तो अपनी बात करेंगे, लेकिन आप लोग क्या बात करेंगे, आपके जहन में क्या है, आपके जहन में क्या सवालात हैं, वो भी तो आप बताएं ना हमें। हमारी फेसबुक ऑनलाइन है, फोन लाइन पे मैसेज रिकॉर्डर के जरिए आप हमें अपने सवाल, अपनी जो बातें हैं मीठी मीठी, वो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल कर सकते हैं। तो चलते हैं, वक्फा लेते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसे आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी बहरहाल आप लोगों ने जो है रास्ते देख लिए कि कैसे आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अच्छा रुबाब, थोड़ी सी हम लोग भी बात करते हैं इसी मौजू पर कि घरेलू जो माहौल होता है उसकी कितनी अहमियत होती है। एक चीज़ जो हमेशा मेरे जहन में आती रही है और जहन में अटक जाती है वो ये है कि चलो माँ बाप के अपने मसाइल वगैरह होते हैं, कभी कभार ताल कलामी हो जाती है, बहस हो जाती है, लेकिन बच्चों के सामने बहस करना, बच्चों के सामने ताल कलामी, ये आपके ख्याल में क्या सही काम है?
मेरे ख्याल में तो बिल्कुल यानी सही नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चा एक चीज़ होता है हमेशा से, जब हम छोटे थे तो हमने एक ज़रब मिसाल सुनी थी कि बच्चा मोम की तरह होता है, आप जिस तरह भी इसको मारना चाहिए या बनाना चाहिए वो वैसे ही बन के सामने, उभर के सामने आता है, तो वो सीख रहा है, दरवाज़े वो उस वक्त सीख रहा है। अगर आप तलख कलामी कर रहे हैं, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, या आपकी आवाज़ अपनी बीवी पर या आपके शोहर पर ऊँची हो रही है, वो बच्चा ऑन द स्पॉट आपके सामने बैठ के वो सीख रहा है, और बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कल को वही बच्चा अपनी माँ के सामने نے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہی الفاظ جو آپ نے اس کی بچپن میں استعمال کیے تھے, ہو سکتا ہے کہ انہیں الفاظ کو وہ دہرائے. بالکل ٹھیک نہیں ہے.
بالکل ٹھیک بات کی آپ نے رباب. اور کیا ہم لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر غصے میں بھی ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے, مثلا اگر آپ کا شوہر غصے میں ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ اپنے شوہر کو بولیں کہ بھائی صاحب چلتے ہیں کمرے میں وہاں پر بات کرتے ہیں.
بھائی صاحب نہیں, جی
شوہر محترم. تو یا اگر آپ کی بیوی جو ہیں وہ غصے میں ہیں تو کیا آپ جو ہیں آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ اپنی بیوی کو کہیں کہ جی دیکھیں چلتے ہیں کمرے میں, بیٹا بیٹھا ہوا ہے, بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے سامنے جو ہے یہ بحث اچھی نہیں ہے, کل کو وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بولے گا یا سیکھے گا مختلف چیزیں. تو یہ اتنا ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے کیا؟
دیکھیے اور خرم, ایک بات ہمیشہ سے میں بولتی ہوں, اگر ایک اس وقت غصے میں ہے, اس کا غصے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 100 سے بڑھ گیا ہے, تو دوسرا جو ہے, اب وہ چاہے دوسرا مذکر ہو یا مونس, اس کو چاہیے کہ وہ اس منٹ کے لیے چپ ہو جائے.
بالکل
بحث نہ کرے. دیکھیں بحث سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چلائے گا, آپ چلائیں گے, وہ چلائے گا. ایک چپ ہو جائے, تھوڑی دیر کے لیے کوتا آ جائے, بعد میں جب وہ اگلا بندہ جس کا ٹیمپریچر 100 سے اوپر چڑھ گیا تھا, بالکل چپ ہو گیا اور آرام سے بیٹھ گیا, بات چیت سے حل کرے.
بالکل ٹھیک بات کی. اور اسی بات پر وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم سوال پوچھیں گے, دیکھیں گے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو چلتے ہیں ہمارے پاس جو ہے, ہم چلیں گے قم کی, مقدس شہر قم کی سیر کریں گے اور وہاں پر زیارات کریں گے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ڈاکٹر جعفر رضی خان کے ساتھ. صبح سویرے آپ لوگوں کو ہم نے زیارات کروا دی, آپ کا دن جو ہے انشاءاللہ بہت خوبصورت اور خوشیوں سے بھرا ہوا گزرے گا. وقت ہوا ہے گفتگو کے سیگمنٹ کا, چلیں گے رباب کے پاس.
جی بہت شکریہ خورا, میں بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ناظرین امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا دن آج بہت بہت اچھا گزرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب, اور چلتے ہیں فوراً موضوع کی طرف. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام.
بہت بہت خوش آمدید, کیا اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا.
آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا.
ڈاکٹر صاحب, ایک بہت اہم موضوع جو میں بول سکوں, میاں بیوی کے آپس میں وظائف یا ایسے وظائف جو گھر کے ماحول پہ بچوں کے مستقبل پہ وہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم اسی سے شروع کریں گے, ایک نیولی ویڈ کپل آپ دیکھ لیجیے, میاں بیوی آپس میں ان کے کیا وظائف ہیں ایک دوسرے کے لیے؟
دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ فیملی کو کیسے جو ہے وہ جو فیملی میں ایشوز ہیں ان کو مینیج کرنا. تو اس میں جو زیادہ تر جو ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک فیملی جو ہے وہ ایک عشق و محبت کا نمونہ بن جائے, تو اس میں یہ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی فضا ہو. جب ایک انڈرسٹینڈنگ کی ایٹماسفیئر ہوگی, اور دوسرا یہ ہے کہ جو کام ہیں ان کی جو ہے وہ یعنی ایک قسم کی جاب ڈسکرپشن ہو, یعنی کام جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوں کہ کس نے کون سے کام جو ہے وہ انجام دینے ہیں. اور اس میں یہ جو ہے وہ سچویشن کے مطابق ہو سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ یہ کام حتماً جو ہے وہ ہسبینڈ انجام دے گا یا یہ جو ہے وائف انجام دے گی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کپل کے, اس فیملی کے, اس معاشرے کے جو نارمز ہیں, جو اس معاشرے کے اصول ہیں, یا اس ایون اس فیملی کی جو شرائط ہیں, کنڈیشنز ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ جو آلریڈی تقسیم شدہ ہے, یا لیکن اس میں بھی جو ہے دونوں کو جو ہے وہ کوآپریٹ کیا جا سکتا ہے. اور جب بات ہوتی ہے بچوں کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بچے ہیں اس سے زیادہ کہ وہ ہماری بات سنیں, وہ ہمیں جو ہے وہ فالو کرتے ہیں, امیٹیٹ کرتے ہیں, یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں, یعنی وہ ہمیں واچ کر رہے ہیں.
جی بالکل ڈاکٹر صاحب, میں نے دیکھا بھی ہے اکثر چھوٹے بچے اس طرح ہوتے ہیں کہ بیٹے زیادہ تر باپ کو کاپی کرتے ہیں, ہم روٹی لینے جا رہے ہیں, یہ بیٹیاں ماں کو کاپی کرتی ہیں کھانا بنانے. بالکل
بالکل ایسے ہوتا ہے, یعنی بچوں کی یہ نیچر ہے, یہ سائیکالوجیکل حوالے سے کہ وہ جو ہے وہ کاپی کرتے ہیں اور امیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اگر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ ایجوکیشن کو اہمیت دیتے ہیں, تو ان کے جو بچے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ ان کی تربیت میں جو ہے سارے جو اصول ہے اور بیسک پرنسپلز ہیں, اس کو جو ہے خیال رکھا جائے کہ وہ معاشرے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیلنجز ہیں فیوچر کے, ان کو ایسی تربیت دی جائے, ان کو ان سکلز سے اکوپ کیا جائے, ان کو ایسی ایجوکیشن جو ہے وہ دلائی جائے جس میں مختلف لینگویجز شامل ہوں, جس میں جو موجودہ نیاز یا سائنٹیفک ایجوکیشن ہے جو بھی ہے, جس میں جو ہے وہ معاشرے کی نیڈس کو بھی میٹ کر سکے اور جو فیوچر کے چیلنجز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ कर सके। तो इसका मतलब ये कि ये तरबियत, ये जो फैमिली के उमूर हैं, इनमें कोई इफरात और तफरीत जो है वो ना हो, एक किस्म की बड़ी मॉडरेट तरीके से जो है,
एक तरह से आप बोल सकते हैं बैलेंस, या
बैलेंस, बिल्कुल एक बैलेंस जो है वो फैमिली के अंदर जो है कायम रहे।
ठीक है।
इवन बच्चों को प्यार करने के हवाले से भी वो इतने ज्यादा ना हो जाए कि एक बैलेंस हो के
एक हद से बढ़ जाए बच्चा
बढ़ जाए, और जो है जिसे जो है फ्यूचर में एक मुफीद फर्द जो है वो साबित ना हो सके।
ठीक है।
तो बाद बच्चे देखें, वालदैन जो है वो कहते हैं कि हम राइट जो है वो हमारे बच्चे के साथ, हक हमारे बच्चे का है, तो ऐसा नहीं है। बच्चों को समझाया जाए कि अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ जो है वो फूड को कैसे शेयर करना है, इवन जो है घर में अगर कोई बच्चा आता है तो उसका टॉय को कैसे शेयर करना है, लव्स को कैसे जो है बांटना है, कैसे दूसरों को गिफ्ट देने हैं, कैसे जो है, तो ये एक वसी जो है वो एक प्लानिंग है जिसमें हमारी ट्रेडिशंस, हमारी रिलीजन, हमारी जो रिवायती अकदार हैं उनको भी जो है वो मलहूज रखना चाहिए।
जी डॉक्टर साहब, यहाँ तक
जी।
बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह प्लानिंग की तरफ ज़रूर आएंगे, क्योंकि प्लानिंग एक मेन में बहुत
जी
सुतून हो सकता है इस चीज़ का। जी
हाँ,
हमें एक वक्फा लेना है, वक्फा मेरे ख्याल से लेना
जी,
खबरों के पास चलना है।
थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा ताज़ा होके आते हैं, थोड़ी जो स्टूडियो के बाहर की हवा है वो खा के आते हैं, उसके बाद दोबारा जो है जो मौजूद हमारा चल रहा है उसको आगे चलाएंगे। खुश आमदीद आपको कहता हूँ एक बार फिर स्टूडियो में। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है, आप लोगों के सवालों का, आप लोगों के जो नज़रात हैं उनका। बहरहाल मैं फेसबुक पे यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। फिलहाल अभी चलेंगे हम रुबाब के पास, ताकि रुबाब जो है गुफ्तगू का आगे चला सकें। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम जी। डॉक्टर साहब, मौजू की तरफ वापस आते हैं, और इस तरह तो हमें पता चल गया कि वालदैन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है या घर का सुकून आप बोल सकते हैं। आपने बात की प्लानिंग की, तो वालदैन को ऐसी क्या प्लानिंग करनी चाहिए जो इनके बच्चों के एजुकेशन या तालीमी जो सिस्टम है उसमें मुफीद साबित हो उनके लिए?
देखिए, सबसे पहली बात ये कि जब आप एक फैमिली के अंदर जो है वो एजुकेशन का माहौल, एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जब आप ख़ुद एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों पर हद से ज़्यादा प्रेशर लाया जाए कि जैसे जो है वो आज का बच्चा जो है वो स्कूल जाते हुए बैग को भी नहीं उठा पाता इतनी भारी बुक्स है। इसमें यह है कि कैसे जो है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए कि जिसमें बच्चा जो है वो, आप जब आउटिंग पे भी जाते हैं तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो लर्न कर सके। और अगर स्कूल में भी यही मदारिस में, स्कूल्स में ये सिस्टम हो कि जो है वो टीचर एज अ फ्रेंड जो है उसको जो है वो गेम्स की सूरत में, तफरी की सूरत में जो है वो मुख्तलिफ लर्निंग स्किल्स जो है या कुरिकुलम जो है वो उसको सिखाए जाएँ, तो वो उसमें आता है।
ठीक है।
तो अब जो उसमें ये कि जो हमारी स्किल्स है, जो एडवांस स्किल्स है, वालदैन जब उससे आशना नहीं होंगे, जो उस हमारे दौर की जो तकाजे हैं और उसके मुताबिक बच्चे को एजुकेशन जो है वो नहीं दिलवाएंगे और एक टाइम टेबल और एक स्केड्यूल सेट नहीं करेंगे, तो मे बी जो है वो अचानक जो है काम जो है वो एक जब पाइल अप हो जाता है या एक ढेर सा लग जाता है, तो एक साथ जब उसको जो है वो स्कूल में या घर में वो बच्चा करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे मुश्किलात पेश आएगी। तो इसमें वो शामिल है कि आप फैमिली के अंदर जो है और स्कूल के अंदर जो है वो बच्चे को जो है वो एक डिसिप्लिन सिखाए, बच्चे को जो है एक बहुत बड़े काम को जो है उसे सिखाए कि कैसे जो है छोटे हिस्सों में तकसीम करना है और फिर उसको कैसे टैकल और जो है वो हैंडल करना है।
बच्चे को प्लान करना सिखाएं कि अपना कैसा शेड्यूल प्लान करना है,
बिल्कुल शेड्यूल कैसा प्लान करना है, और फिर ये कि सोशल हवाले से दूसरों से जो है वो कैसे डील करना है, कहाँ पर जो है उसने कंप्रोमाइज़ करना है, टफ सिचुएशन में कहाँ पर जो है उसने अपने राइट्स का मुतालबा करना है, कहाँ पर जो है अपने मुमकिन है बाज़ जगह पे राइट से उसे इग्नोर करना है। तो ये जो है एक प्रोसेस है जो बच्चे जो है ख़ुद एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस एक्सपीरियंस के मरहले में जो, या ये जो बात हुई कि वो हमको कॉपी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ जो है उनको वैल्यूज़ भी सिखाएं, एजुकेशन के साथ जो है उनको एथिक्स भी सिखाया जाए, एजुकेशन के साथ जो है उनको जो है सोशल लाइफ में जो है वो कैसे सक्सेसफुल होना है,
बिल्कुल
खुद जो है इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो भी जो मौजूदा, बहरहाल जहरी सी बात है कि
जी
मौजूदा एज की सबसे बड़ी मुश्किल इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज है, तो उनको कैसे करना है कि जो अगर उनको पॉकेट मनी दी जाती है तो
जी
उन्होंने स्किलफुली उसे कैसे मैनेज करना है,
बिल्कुल
और कैसे फ़र्ज़ करें कि अगर स्कूल की कैंटीन से कोई चीज़ लेनी है तो कौन सी हेल्दी फूड्स जो
फूड्स
है
खाने को जी
वो बाई करनी है। तो एक तरबियत है, एक ट्रेनिंग है जिसमें सब पर्सपेक्टिव्स को, सब आस्पेक्ट्स को आपको जो है
नज़र में रखना है
नज़र में रखना है,
बिल्कुल
और ये ट्रेनिंग जो है एक टेंशन की फ़ज़ा में नहीं होनी चाहिए बल्कि
बिल्कुल
एक फ्रेंडली और एक रिलैक्स फ़ज़ा में
ठीक है
होगी। चूँकि जब अगर फैमिलीज जो है पेरेंट्स जो है वो टेंस है तो वो जो टेंशन है वो बच्चे को भी जो है वो शिफ्ट होगी,
जी डॉक्टर साहब,
और
मुझे
वहाँ
ये
से अगर स्कूल में ऐसा फ़ज़ा है तो
जी
ये एक जो ज़ाहिर सी बात है कि एक
मुझे
सर्कल
आपसे
है।
यही सवाल पूछना, जो कि
जी
अक्सर घरों में ये पेश आता है, घर का माहौल ठीक नहीं होता,
जी
वालदैन की आपस में, हम आपके आने से पहले
जी
भी यही
जी
बात करे हैं, लड़ाई झगड़ा तल्ख कलामी
जी
होती
जी
है, इसका असर यानी एक लड़ाई का वालदैन के बीच में असर बच्चे पे किस हद तक पड़ता है, वो माशरे को क्या था हम दे रहे हैं इसमें?
तो देखिए जब आप यानी वालदेन या एक घर में जो है गुस्से की फ़ज़ा है
जी
तो जहरी सी बात है कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आपसे जो वो तदबीर जो काम को हल जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो आप फाइंड नहीं कर सकते।
बिल्कुल
तो इसलिए जितनी भी टफ़ फ़ज़ा हो जो हमारी दीनी हवाले से हमें जो है वो हिदायत दी गई है और हर हवाले
जी
से कि आप गुस्से से आप टेंशन से टेंस फ़ज़ा से दूर रहे, बल्कि
सही
उस टफ़ सिचुएशन को के लिए जो चीज़ें रिक्वायर है वो उसके लिए जो है जो स्किल्स रिक्वायर है उसके मुताबिक जो है उसका सलूशन फाइंड करें। अगर नहीं तो जो
ठीक
कि अपने दोस्तों से इसकी मदद लें,
सही है
जो इस सिस्टम में जो कोच हैं, जो गाइड हैं,
जी
जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मशवरा करें।
जी
तो लेकिन घर के अंदर या स्कूल के अंदर टीचर्स या प्रिंसिपल जो है ऐसा टेंशन का माहौल क्रिएट करना, गुस्से का माहौल क्रिएट करना अपने क्लास फेलोज़ के साथ, टीचर और स्टूडेंट का आपस में, वालदेन और बच्चे का, ये सब
आपस
जो
में
है वो एक डैमेजिंग है,
अच्छा
ये जो है
मनफी पहलू पैदा
मनफी। इस तरीके से जब वो बड़ा हो के बच्चा जो है वो अपने जो जो जहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट होगा उसमें भी वही चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस करेगा जो उसने
ठीक
अपने
है
घर में सीखी है, जो अपने स्कूल में सीखी है।
जी
तो ये चीज़ें हैं जो हमें जो है वो ह्यूमन वैल्यूज़, जिसमें ये है कि एंगर नहीं होने चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए,
जी
और जिसमें जो है काम की फ़ज़ा हो, रिलैक्स फ़ज़ा हो,
जी
और उसमें जो है आप तरबियती पहलू, एजुकेशनल पहलू
ठीक है
अपने बच्चे के लिए, अपने कलीग्स के लिए जो है वो
एक
या
माशरे के लिए
मदरसे,
आप
एक
बोल रहे थे
मुआशरे के लिए जो आप आए उस
जी
प्लानिंग को आगे लेके
जी
बढ़े।
डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया,
जी
बहुत ही
जी
मुफीद गुफ्तगू चल रही है, और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को भी गुफ्तगू पसंद
जी
आ रही होगी। यहाँ हमें चलना है खुर्रम के पास और देखना है वो क्या ताज़ी खबरें हमारे लेके आए।
जी माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों का वक्त लूँगा और उसके बाद
जी
दोबारा जो है आपको टाइम मिल जाएगा। मैं भी जो है
जी
इससे थोड़ा सा मुतालिक ही गुफ्तगू मौजू जो है अपना लेके आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस सेंस में कि मैं आपको थोड़े से कुछ नुकात बताऊँगा कि कैसे जो है जी भाई साहब जो है, भाई साहब की तस्वीर आ गई, पढ़ने पढ़ने कैसे जो है पढ़ाई में जो है कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल सबसे पहला नुकता वक्त ज़ाया के बगैर मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं कि जो मौजू भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ आप पढ़ना चाह रहे हैं, उसको अपने अल्फाज में, अपने जहन में समझने की कोशिश करें। हर चीज़ को रटा नहीं लगाया जा सकता। जब तक आपको मौजू की, जब तक आप उस टॉपिक की जो चैप्टर जिस चीज़ के बारे में है उसकी समझ नहीं आएगी अपने लफ्ज़ों में, अपने लफ्ज़ों में मुराद ये है कि आपके जहन में वो बात क्लियर होनी चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं। अगर वो चीज़ आपके जहन में आपके अपने अल्फाज में क्लियर नहीं होगी तो आपका हाल इस बच्चे की तरह होगा जो बेचारा अभी 2-3 साल का है, 3-4 साल का है, और जो है बड़ी हैवी किस्म की किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ जहन में रखें। दूसरा ये कि कभी भी इस चीज़ से मत शर्माएं, इस चीज़ से मत डरें कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो लोग आपके पर हंसेंगे, या बच्चे आपके हंसेंगे, या जो उस्ताद है वो नाराज़ होगा। इस चीज़ पर कभी भी जो है आपके जहन में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो बहुत अहम टॉपिक यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि हमेशा ये कोशिश करते रहें कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं या एक सफ़ा याद करते हैं पढ़ते हैं, तो उसके बाद उसको अपने जहन में रिपीट करें और अपने आप से सवाल पूछें। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते चले जाएं, याद करते जाएं और आखिर में पता चले कि कुछ भी याद नहीं हुआ। ये बहुत ज़रूरी है। अपना क्विज़ अपने से एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर लें, वरना जो है उसका कोई शायद आखिरी में फ़ायदा ना हो। और आखिरी चीज़ एक जो है वो ये है कि सिर्फ किताबों, बहरहाल इस पर थोड़ा सा जो है मैं शायद ख़ुद इस बात को बहुत ना मानूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ किताबों ही से इल्म हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आपको एक चीज़ की समझ नहीं आती तो आप जो है इंटरनेट पे वेबसाइट चेक कर सकते हैं या दूसरे ज़राए जो हैं उसको भी चेक कर सकते हैं। बहरहाल इस पे बहस की जा सकती है। डॉक्टर साहब भी मैं कहूँगा कि अगर इसके ऊपर जो है थोड़ा सा इशारा कर दें तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। और आखिरी चीज़ ये कि अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल आपने बनाना है वो इस तरह का बनाएं कि आप की पढ़ाई का शेड्यूल फ्लेक्सिबल हो, बहुत सख्त ना हो, ऐसा ना हो कि आप उसमें पीछे रह जाएं। और अगर आप उसमें पीछे रह जाएंगे तो उसमें आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, लेकिन ऐसा बनाएं जो फ्लेक्सिबल हो। ऐसा ना बनाएं कि आप जो है खाने का टाइम भी उसके अंदर ना हो, पानी पीने का टाइम भी उसमें ना हो। तो बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। छोटा सा एक वक्फा लेंगे, उसके बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, एवोकाडो एक नया फल है, शायद जो है आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किलों से मिले, लेकिन जो है जो ईरान में है हमारे नाज़रीन उनको मिल जाएगा या दूसरे ममालिक में उनको भी बहरहाल इसकी पहुंच में होंगे ये लोग। बहरहाल एवोकाडो की कुछ फ़वाद मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको कहीं पर मिल जाए या अगर आपको ये मुश्किलात हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। 14,000 लोगों पर एक रिसर्च हुई अमरीका में और रिसर्च हुई थी इस सिलसिले में कि दिल की बीमारियाँ और एवोकाडो का जो आपस में ताल्लुक है उसके बारे में बहरहाल रिसर्च हुई थी। और उसमें जो कहा गया है कि ये देखा गया कि एवोकाडो इस्तेमाल करने वाले जो हमारे मरीज़ हैं उनके दिल की जो हालत है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। तो जिन लोगों का हमारे नाज़रीन में से दिल की मुश्किलात, दिल की बीमारियां हैं, वो एवोकाडो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी बदन के अंदर कहीं भी वर्म होना बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, उसमें उस सिलसिले में भी एवोकाडो का इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत अच्छा है, बहुत आपके लिए जो है मुफीद साबित हो सकता है। इन्फ्लेमेशन से मुराद ये कि जैसे कभी कभार देखते हैं कि गला जो है आपका वर्म कर जाता है, सूजन आ जाती है, इस तरह की जो मुश्किलात हैं वो पूरे बदन में कहीं पर भी हो सकती हैं गले के साथ साथ। उसके अलावा कहा जाता है कि इसके अंदर ओमेगा 3 जो है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है, जिसकी वजह से जितनी जो जोड़ों के मसाइल हैं, हड्डियों के दर्द हैं, उसके लिए जो है कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। उसके अलावा निज़ामी निज़ाम जो है उसके सिलसिले में भी कहा जाता है कि बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि जो हमारे जो बदन में चर्बी की एब्जॉर्प्शन है, चर्बी का जज्ब होना है हमारी आंतों में, उसमें बहुत ज़्यादा मदद देता है, क्योंकि अक्सर चर्बी के जज्ब होने में हमें जो है बहुत मुश्किलात बहरहाल पेश आती हैं। उसके अलावा सबसे अहम जो एवोकाडो का फ़ायदा जो बयान किया जाता है वो ये है कि एवोकाडो जो है वो जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनके शुगर को कंट्रोल करने के लिए, या जो लोग वैसे ही जिनको ये एहसास होता है कि वो जो है मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या उनका ब्लड शुगर जो है वो ऊपर रहता है, तो वो अगर एवोकाडो का इस्तेमाल करें तो वो एवोकाडो जो है जो हमारे बदन में जो मेटाबॉलिक वे होता है, जो खाना जब हज़म होता है जिसका ताल्लुक हमारे जो है ब्लड शुगर से है, खून में जितने जो है शुगर की मिकदार कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए उससे है, उसको जो है बैलेंस में रखता है। और ये सबसे अहम नुक्ता है एवोकाडो के इस्तेमाल का, सबसे अहम फ़ायदा है एवोकाडो के इस्तेमाल करने का। बहरहाल एंटी कैंसर फवाइद भी इसके हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि कैंसर से भी बचाता है, और भी बहुत सी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई हैं, लेकिन वक्त हुआ है गुफ्तगू सेगमेंट का, तो चलते हैं दोबारा रूम आपके पास।
बहुत शुक्रिया खुर्रम। एक बात मैं यहाँ पे आपकी बातों में ऐड करती चलूँ, कहते हैं कि एवोकाडो गोश्त गलाने के जैसा हम पपीते का भी इस्तेमाल अच्छा, करते हैं, अगर आप उसको क्रश करके डालें गोश्त करते हैं तो गोश्त को बहुत जल्दी गला देता है, ये अच्छा, भी इसके खास फायदे
हैं।
जी चलते हैं गुफ्तगू के सेगमेंट के पास, यानी डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल अक्सर घरों में देखा गया है, या तो बात सिर्फ अब्बू की होती है तो उनकी बात पे कोई बात नहीं करता, या तो अम्मी की बात ही चलती है या तो फिर बच्चों की बात चलती है, यानी एक बंदा है जो रूल कर रहा है घर को, आपके ख्याल में कौन सा इन तीनों में से जो है यानी बेहतर होगा, या सबको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए या नहीं एक ही का राज चलना चाहिए?
देखिए, ये जो फिनमिना है, ये जो मुश्किल है, ये जो है ये मौजूदा दौर में है कि बाज़ सोसाइटीज़ जो है वो मेल डोमिनेंट है,
बिल्कुल,
बाज़ सोसाइटी जो है वो फीमेल डोमिनेंट है
जी।
तो अभी तो मौजूदा सिचुएशन में ये देखने में आया कि खुद बच्चे ही डोमिनेट करते हैं कि जैसे उनकी मर्ज़ी घर में चलती है।
सही।
तो इसमें जो है बेसिकली वही बात है कि हमें ये चाहिए कि देखिए अपने मुआशरे के मुताबिक हम मॉडर्न कल्चर ज़रूर लें,
बिल्कुल
लेकिन उसको जो है या जो एडवांस्ड नॉलेज है उसको ज़रूर लें, लेकिन उसको एडजस्ट करें अपनी दीनी वैल्यूज़ के मुताबिक, अपनी रिवायती अकदार के मुताबिक,
जी
और उसमें जो है वो एक बैलेंस करके जो है उसको आगे बढ़ाएं।
ठीक
तो
है
अब ये है कि बाद जगहों पे फ़र्ज़ करें कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है कि अगर स्कूल में पेरेंट्स डे है तो यानी मदर को जाना है या फादर को जाना है या दोनों में से जिसके पास ज़्यादा टाइम
बिल्कुल
अवेलेबल है अगर एक काम पे है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको एडजस्ट किया जा सकता है, जिनमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए।
जी
और इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है वो एक बच्चे के लिए अगर ये चीज़ माँ अरेंज करती है तो किसी वक्त जो है बाप को भी उसके लिए रेडी होना चाहिए।
सही
तो ये है कि जो कुछ हो रहा है वो दोनों जो है मदर और फादर जो है उसको क्लोजली जो है वो वॉच कर रहे हैं।
ठीक है
अगर एक चीज़ जो है वो एक रूटीन बन गया है और एक जो है शेड्यूल बन गया है कि बाप करेगा, तो अगर वो
सही
माँ को भी बच्चे के लिए अंजाम देनी
करना
पड़ती है तो उन दिनों में हो सकता है।
ठीक
तो इसमें जो जब आप इसमें ये नहीं है कि मेल डोमिनेंट या फीमेल डोमिनेंस या बच्चे की, इसमें ये कि एक घर की जो उमूर है उनकी तकसीम कार में जो है वो एक किस्म की कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग,
जी
एक दूसरे को जो है वो रिप्लेस करना मुख्तलिफ सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा।
ठीक
और दूसरी बात जो डॉक्टर खुर्रम साहब ने कही थी वो मैं उसकी तरफ भी
जी
इशारा
जी
करता चाहूँ, वो बहुत अहम बात
जी
थी
बहुत शुक्रिया
कि
जी
आज की जो एजुकेशनल सिस्टम है
बिल्कुल
उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बच्चे जो हैं वो किताबें पढ़ते हैं
बिल्कुल
या एक किताब पढ़ रहे हैं या उस किताब का जो है वो सिर्फ टेस्ट देना है।
ठीक
उसमें ये होता है कि सबसे अहम मसला तो ये है कि क्या आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको कंप्रीहेंड भी कर रहे हैं।
ठीक है
कंप्रीहेंशन जो है वो सबसे अहम
ज़रूरी
मसला
है
है कि उसमें रट्टा सिस्टम जो है जिसने हमारे मुआशरे की जो है वो एजुकेशन पिलर्स को जो है वो शेख हिला के रख
बिल
दिया
हिला
है।
के रख दिया सही
तो
बात है
इसलिए अगर हम चाहते हैं कि कंपिटेंट लोग जो है कल हमारे मुआशरे के ये बच्चे जो है वो हमारे मुआशरे के जो है वो मेमार बन के आए, तो
बिल्कुल
हमें शुरू से उनको कंप्रिहेंशन सिखाना चाहिए
बिल्कुल
कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको क्या अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं या नहीं,
समझना भी ज़रूरी है
और अगर उसके लिए ज़रूरी है तो एक बुक के अलावा उस टॉपिक को मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है मज़ीद सोर्सेज से हेल्प ली जाए,
जी बिल्कुल
टीचर जो है ख़ुद उसको एक्सप्लेन करे।
बिल्कुल
बल्कि अभी तो ये है कि बच्चों को जो है रिसर्च मेथड सिखाया जाए
जी
कि
जी
एक टॉपिक दिया जाए और उस टॉपिक को वो मुख्तलिफ बुक से इंटरनेट के ज़रिए
ये
लाइब्रेरी की अहम अच्छी बुक्स हैं
जी
तो वो उस एक टॉपिक को जो है उसके लिए रिसर्च करके आए और कहें कि
बिल्कुल
हम जो है इस नतीजे पे पहुँचे हैं और इस टॉपिक के मुख्तलिफ जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो ऐसे हैं। तो
जी
जब अगर हम ये मेथड बच्चों को सिखाते हैं तो वो एडवांस लेवल की एजुकेशन की तरफ भी जा पाएंगे,
जी
अपने जो बल्कि जो ये रिसर्च मेथड उनके जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काम आएगा कि
बिल्कुल
जब एक
बिल्कुल
कोई मुश्किल आती है, एक प्रॉब्लम आता है, उसका जो सलूशन होगा तो उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स जो है वो उसको ज़रूर देखेंगे।
बिल्कुल
तो एक बात वही हो गई कि जैसे इन्होंने कहा कि वो टाइम टेबल जो है वो
प्लानिंग हो
फ्लेक्सिबल होना
बिल्कुल
चाहिए। यही बात जो हमने पहले की कि घर में या स्कूल में जो है कोई टेंशन, कोई
बिल्कुल
फ्रस्ट्रेशन, कोई जो है वो इस किस्म की एटमॉस्फेयर नहीं होनी चाहिए।
जी
और दूसरा कि सिर्फ ये कि डिग्री के लिए पढ़ना
ये
या
सही नहीं
ये कि
है
मार्क्स के लिए जो है वो पढ़ना, ये जो है वो
सही
सिस्टम्स जो
नहीं
है अब यानी मौजूदा दौर में जो है वो फिट नहीं हो पाएगा, हमारी नीड्स को, मुआशरे की नीड्स को
पूरा नहीं कर
पूरा नहीं
पाएगा
कर
बिल्कुल
पाएगा।
जी जी डॉक्टर
जी
साहब बहुत शुक्रिया और बहुत मुफीद
जी
गुफ्तगू रही और बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए मैं
बाबा
यहाँ साहब से खुदाफिसी करूँगी जी खुर्रम
जी बहुत शुक्रिया, मैं
जी
आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब ने बड़ी जो है मुफीद गुफ्तगू की हमारे नाज़रीन की खिदमत में, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलके जो है उन बातों पर जो एक नुक्ता डॉक्टर साहब ने उठाया बहुत ज़रूरी है कि एक किताब को जो है चिपकना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे लाइब्रेरी का इस्तेमाल हमारे ममालिक में बहुत कम है। लाइब्रेरियां हैं, सरकारी लाइब्रेरियां हैं, यूनिवर्सिटी में होती हैं, स्कूल में होती हैं, वहाँ जाके मुख्तलिफ किताबों को डिस्कस करें और टाइम को मैनेज करें। अक्सर ये मसला पेश आता है, कहते हैं कि जी टाइम नहीं, भाई टाइम को मैनेज करें तभी तो ज़ाहिर बात टाइम निकलेगा, ऐसे तो टाइम नहीं बारह निकलेगा। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, यहाँ पर छोटा सा एक वक्फा हम लेंगे और उसके बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी आप लोगों ने खूबसूरत तराना सुना, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, मैं इस तरफ आ जाऊं। और जी मेरे पास
जी
कमेंट्स हैं कुछ यहाँ पर,
जी
मीर फिरोज़ अली साहब ने हमें बोला है कि प्रोग्राम बहुत मालूमाती है, बहुत शुक्रिया। और आपने बोला है कि इमाम रज़ा अलैहि सलाम के रोज़े के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाए, और तो इसके बारे में ये भी बताता चलूँ कि जिस जब भी इमाम की विलादत और शहादत का दिन होता है तो हम बाकायदा लाइव जो है वहाँ से कवरेज दिखाते हैं, और इंशाल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को
कुछ हफ़्तों में, चूँकि मेरे ख्याल से आने वाला है इमाम की शहादत का दिन है मेरा,
सही ठीक जी बिल्कुल, जिस दिन इमाम की शहादत और विलादत का दिन होता है तो हम लोग वहाँ से लाइव जो है कवरेज दिखाते हैं, और बार उसके अलावा भी जो है हम पूरी कोशिश करेंगे आपको दिखा सकें। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और जो हमारे पास कमेंट आया है रुबाब, वो ये आया है कि हुसैन आदिल साहब ने कहा है कि सलाम दोस्तों, वीडियो नहीं चलती, वीडियो नहीं चल रही। जी बिल जी, वीडियो क्यों नहीं चल रही जी, ये सवाल जो है हम उठाएंगे इंशाल्लाह असेंबली में, और
ये
पूछेंगे
मुद्दा हम उठाएंगे जरूर
बिल्कुल, और इनसे पूछेंगे कि जी वीडियो क्यों नहीं चल रही, वीडियो जो है चलनी चाहिए। और यहाँ पर ताहिर रज़ा साहब ने हमें बोला है, सलाम आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया, लेकिन सिर्फ यह है तारीफ़ से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को जैसे मैंने कमेंट में जवाब भी दिया है और कहा है कि प्रोग्राम में शामिल हों तब मज़ा आएगा। यही जो एक जुमला आप हमारी तारीफ़ लिखते हैं, मेरे ख्याल में इसके बजाय अगर आप एक सवाल या आपके जहन में अगर जो बात है हमारे मौजू के बारे में उसके बारे में ज़रूर बताएं
जी। अच्छा, और हम चलते हैं आज के दिन की तरफ, यानी आज की रात की तरफ फिर से। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं, ठीक है, और तरबूज खाया जाता है। अब इनकी वजूहात भी मैं आपको बता दूँ, तरबूज खाया जाता है कहते हैं इसलिए, सबसे पहले तो खुदा की नेमत के लिए जो है, सारे जो अफराद हैं ख़ानदान के जमा होकर वो खुदा से बहुत बहुत, यानी आप बोल सकते हैं तशक्कुर या बहुत सी शुक्रिया जो खुदा का अदा करते हैं कि आपने इतनी नेमतें हमें दी। और फिर उन बेचारे किसानों का जिन्होंने इतनी जहमत से इस तरबूज को, यानी जो है एक साल तक पाला पोसा, और इतने यानी मज़ेदार फल में जो ये तब्दील हुआ हमारे लिए बीज से, उनके लिए यानी एक शुक्रिया अदा होता है। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स आपको पता है गर्म होते हैं, इसकी तासीर जिस्म पे गर्म होती है, वो घर की जो गर्मी होती है, जो अफराद की गर्मी जो होती है ख़ानदान की, जो आपस में जो मिल बैठते हैं, वो उस गर्मी के लिए होता है। तो मैंने कहा नाज़रीन को बता दूँ, ना बोलना चाहिए तरबूज क्यों खाया जाता है।
बड़ी अच्छी आपने बात बताई, और जो है इसकी पूरी जो है एक तारीख है, अब अगर शब यल्दा जो फारसी में यहाँ पर इसको कहा जाता है उसकी तारीख है। बहरहाल इसके बारे में बात करेंगे, चलते हैं खूबसूरत सी मौसीकी और खूबसूरत सा वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद आपके खिलौने हाजिर होते हैं जी। तो आप लोगों ने खूबसूरत मनाजिर देखे, और ये मनाजिर इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि आपको जैसे कि पता है कि बहरहाल क्रिसमस भी नज़दीक है और नया साल भी नज़दीक है, बहरहाल इससे सिलसिले में जो है उसी जैसे वो बर्फ़ जो है एक वो क्या आप कहते हैं वो एक सिंबल सा बन गया है,
सिंबल सा बन गया, हमें आपको याद दिला दिया ये नाज़रीन के क्रिसमस और नया साल जो है वो आने वाला है। बिल्कुल
बिल्कुल, यहाँ पर रुबा मैं कुछ जो है नुकात बताऊंगा कि ये जो घरेलू लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं उस सिलसिले में जल्दी से जैसे ही टाइम खत्म होने लगे आप मुझे बता दी मैं खत्म करूँ। एक जो ये लिखा हुआ है कि बच्चे जो हैं अगर उनके घरों में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो अपने माँ बाप से इस बारे में बात करें, वो कहें कि जो है आपकी लड़ाइयों की वजह से हम परेशान होते हैं। उसके अलावा फौरी तौर पे अगर आपको लगे कि लड़ाई हो रही है तो आप फौरी तौर पे कमरे से बाहर निकल जाएं, दूसरे कमरे में चल जाएं। उसके अलावा ये लिखा हुआ है कि ये ज़रूर अपने जहन में रखें कि लड़ाई जो है वो आपकी वजह से नहीं हो रही, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा ये लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि लड़ाई जो है वो उसमें बहुत शिद्दत आ गई है तो आप जो है अपने किसी रिलेटिव को कॉल करें, दादा दादी या जो कोई है उससे कॉल करें और उससे जो है मदद मांगने की भी कोशिश करें। और बहरहाल इसके अलावा जो है ये दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने वालदैन को ज़रूर ये बताते चलें कि आप लोगों के अलावा भी घर इस घर में और लोग भी रहते हैं।
बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत, मेरे ख्याल से खुलासा हो गया पूरे मौजूद आज का हमारा,
शुक्रिया।
और मैं कल के बारे में पता चलूँ, कल का इतवार का दिन है और बच्चों के मसाइल के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, और डॉक्टर सुहैल फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में
इंशाल्लाह। बड़ा अहम मौजू है, बच्चों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि बच्चे जो है वो जो है कल का मुस्तकबिल होते हैं, मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, आपके घर का और आपकी नस्ल का मुस्तकबिल बनाते हैं, तो जितना उनका ख्याल रखेंगे आपका घर उतना जो है हरा भरा खूबसूरत रहेगा,
मुल्क माशरा
बिल्कुल
सब कुछ हरा भरा रहेगा।
बारह वक्त हमारा मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, रुबाब हमेशा आपके लिए दुआ करती हैं
जी, हमेशा यही दुआ करूंगी, मेरी हमेशा यही दुआ रहेगी कि मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन के जो चेहरे पे है ये खूबसूरत सी मुस्कुराहट हमेशा कायम और दायम रहे।
बिल्कुल, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए मुझे और रुबाब को प्रोग्राम सुबह जिंदगी तेहरान स्टूडियो से इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।